भूतेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिवे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಆಜ್ ಕಿ ಬಹುಶ್ರುತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನಾ ಕಿ बहुश्रुत भक्ति भावना. बहुत यानी बहु यानी बहुत, श्रुत यानी बहुश्रुत को जानने वाले ज्ञाता, भगवान की वाणी को पूर्णतः ग्रहण करने की क्षमता, श्रुतज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होता. यह क्षमता प्राप्त होती है तो संग्रह करके, विचार करके उस पर बोलने की शक्ति आ जाती है. श्रुत ज्ञान में परिपूर्णता का नाम है बहु श्रुत. बहुश्रुत को जो जानते हैं उनको हम बहुश्रुतज्ञ बोलते हैं. बहुश्रुत की भक्ति करो या बहुश्रुतज्ञ की भक्ति करो, बात तो एक ही है. कल के दिन आचार्य परमेष्टि की भक्ति की थी, आज उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति हम कर रहे हैं. किस हेतु? तीर्थंकर प्रकृति के बंध हेतु. बहुश्रुत वाले की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, क्योंकि ये हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं. कौन से परमेष्टि शिक्षा गुरु? उपाध्याय परमेष्टि हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं और आचार्य परमेष्टि हमारे लिए दीक्षा गुरु हैं. दीक्षा किस परमेष्टि से लेना चाहिए? आचार्य परमेष्टि से. और शिक्षा किस परमेष्टि से लेना चाहिए? उपाध्याय परमेष्टि से. दीक्षा भी मिल गई और शिक्षा भी मिल गई तो बात पूरी हो गई. दीक्षा मिलने के बाद शिक्षा मिल जाती है तो बात पूरी हो जाती है. अब साधना करके अपने आत्मा का कल्याण अच्छी तरह से कर लेने का एकमात्र मार्ग देख देख करके चलना होता है. मार्ग चलते समय दीक्षा भी आवश्यक है और शिक्षा भी आवश्यक है. ज्ञान भी आवश्यक है और आचरण भी आवश्यक है। ज्ञान उपाध्याय परमिष्टि के द्वारा लिया जाता है और दीक्षा आचार्य परमिष्टि के द्वारा ली जाती है। आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक माना जाता है। ज्ञान के अनुसार आचरण भी चाहिए। ज्ञान है और आचरण नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं। ज्ञान परम आवश्यक है। किसका ज्ञान? मोक्ष मार्ग का ज्ञान। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जो मोक्ष मार्ग संबंधित विषय हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो मोक्ष मार्ग में चलते चलते हमारे लिए मोक्ष मार्ग संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो किस तरह का ज्ञान चाहिए? समीचीन ज्ञान चाहिए। समीचीन ज्ञान की प्राप्ति उपाध्याय परमिष्टि के बिना संभव नहीं। लड़का अच्छा चलना चाहता है लेकिन माँ बाप के निर्देशन को छोड़कर चल रहा है तो फिर लड़का सफल नहीं बनेगा। सफल नहीं बनेगा। लड़का सफल नहीं बनेगा। माँ शिक्षा देती है और पिता क्या देते? आदेश देते, आज्ञा देते। उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए शिक्षा भी जरूरत है। तो बच्चे को माँ के पास बैठ करके शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चे को पूछना चाहिए माँ से, माँ पिता ने ऐसा कहा है मुझे, इसको कैसे करूं? कौन समझाएंगे? माँ समझाएगी, बच्चा चलेगा। माँ और बाप के निर्देशन के अनुसार चलता है तो घर अच्छी तरह से चलता, वो खुद भी सुखी रहता है और घर के सभी लोगों को भी खुश रखता है। ऐसी संतान क्या आपके घर में है? और ऐसे माँ बाप क्या आपके घर में हैं? ये तीनों ही नहीं हैं तो घर चलेगा कैसे? वह घर केवल विकल्प का घर बन करके रह जाता है। उसमें संसार के अलावा, कोलाहल के अलावा, अशांति के अलावा, कलह के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हमारा घर कैसे हो? शांत हो क्या? कलहपूर्ण हो? शांत हो। तो शांत रहने के लिए माता पिताओं को समझना चाहिए कि हमें सर्वप्रथम धार्मिक बनना है। धर्म के प्रति आस्था जगाओ। धर्म ही शांतिदायक है। माँ को भी धर्म का ज्ञान चाहिए और पिता को भी धर्म का ज्ञान चाहिए। माँ प्रवचन में आती है और पिता घर में बैठा रहता है। निर्देशक, निर्देशन देने वाला, आदेश देने वाला ही घर में बैठा है। संसार शांति से कैसे चल सकता है? दोनों को आवश्यक है। आप बच्चे के माँ बाप हैं तो आपके माँ बाप तो देवशास्त्र गुरु हैं। उनके सानिध्य में नहीं आएंगे, उनका उपदेश नहीं सुनेंगे तो आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। धर्म हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, गुरु हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, शास्त्र का स्वाध्याय हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, विचार करो। ये सब अनावश्यक है क्या? संसार का जीवन जीते जीते देव शास्त्र गुरु धर्म ये अनावश्यक हो जाए तो फिर संसार करना भी अनावश्यक होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना, देव शास्त्र गुरु के बिना संसार शांति से चलने वाला नहीं है। फिर संसार में क्यों पड़ गए, शादी क्यों किया? देव शास्त्र गुरु को छोड़कर के चलने के भाव हैं, तो संसार में पड़ने के भाव ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि संसार ठीक से चलने वाला नहीं है। एक भौतिक जीवन जीते जीते एक आत्मिक जीवन भी जीना है कि नहीं? आत्मा का जीवन अलग होता है, शारीरिक संबंध वाला यह बाहरी जीवन अलग होता है। भौतिक जीवन जीते जीते हमें आत्मिक जीवन भी जीने की कला सीखनी चाहिए, तब संसार सफल माना जाता है। अन्यथा आप भले ही करोड़पति बनो, अरबपति भी बनो, चक्रवर्ती भी बनो, लेकिन विदाउट धर्म के, विदाउट देव शास्त्र गुरु के शरण के, आपका संसार सुखमय चलने वाला नहीं। यह शिक्षा देते हैं उपाध्याय परमेष्ठ। गुरु हमारे लिए दीक्षा देते हैं तो उपाध्याय परमेष्ठ हमारे लिए शिक्षा देते, मोक्ष मार्ग का ज्ञान देते, शांति से जीवन जीने की कला सिखाते, कैसा हम सुख से रह सकते हैं इसकी बातें बताते, और इन सभी बातों को सुन करके चर्या में लाना आवश्यक है। और चर्या में लाने से पहले आदेश लेना आवश्यक है। उपाध्याय परमेष्ठी ने जिसको समझाया, जिस विषय के संबंध में शिक्षा दी, उन बातों को आचरण में लाना चाहते हैं तो आचार्य परमेष्ठी के पास जाओ। आचरण के संबंध में उपाध्याय परमेष्ठी से मत पूछो। क्यों? क्योंकि उपाध्याय परमेष्ठी को ये ज्ञान नहीं कि आदेश कैसे दिया जाता है और आचरण कैसे कराया जाता है। आचरण कराने का ज्ञान उपाध्याय परमेष्ठी को नहीं। समझ में आया? किससे क्या लें? उपाध्याय से शिक्षा लें, ज्ञान प्राप्त करें, खूब विद्वान बने, खूब ज्ञानी बने, खूब विवेकवान बने। अब ज्ञान तो आ गया, ज्ञान के पश्चात आचरण को स्वीकार करें। विदाउट आचरण के आत्मा में शांति मिल नहीं सकती, केवल ज्ञान ही आ गया, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान ही आ गया और आचरण नहीं आया तो फिर शांति नहीं मिल सकती है। एक विद्वान है, भरपूर ज्ञानार्जन किया है, शास्त्रों के हर पन्ने, हर श्लोक, हर विषय उनको मालूम है, लेकिन चलना अभी सीखा नहीं। उनके लिए चलाने वाला भी कोई आवश्यक होता है। उपाध्याय परमेष्ठी खूब पढ़ाते, लेकिन पढ़ाने के उपरांत वो चला नहीं सकते आपको। चलना हो तो वहां चलाने वाले हैं, वहां जाओ, ज्ञान तो हमने दे दिया। उपाध्याय परमिष्टि का काम ज्ञान देने का और आचार्य परमिष्टि का काम आचरण किस प्रकार से निर्दोष रखना समझा करके आपको सही सही अनुभव से कैसे चलना पड़ता है चलना होता है उन सारी बातों को आचार्य परमिष्टि समझा देते हैं और वह शिष्य आचार्य और उपाध्याय दोनों को प्राप्त करता है तो इतनी आत्मा की अनुभूति में डूब जाता है जैसे एक आदर्श माता पिता जीवन के लिए मिल चुके हों। दो गुरु चाहिए जीवन में और एक भगवान चाहिए और पढ़ने के लिए एक शास्त्र चाहिए। ये कितने हो गए? चार हो गए। ये चारों हमारे जीवन में चार चांद लगाने लायक होना चाहिए। ये चारों हमारे जीवन में चार चांद लगाने लायक होना चाहिए। शास्त्र गुरु की वाणी भगवान की वाणी है। भगवान की परंपरा से आई हुई वाणी को गुरु ने झेल लिया है ऐसे शास्त्र चाहिए। छद्मस्त वाणी नहीं चाहिए हमें। वो कल्याणकारी नहीं, वो भटका देगी। छद्मस्त वाणी संसार में भटकाती है और गुरु की वाणी संसार से तारती है। गुरु स्वयं तरण तारण माने जाते हैं। उपाध्याय परमिष्टि तरण तारण है और आचार्य परमिष्टि भी तरण तारण है। इन दोनों से लाभ उठाने वाले कौन? इन दोनों को माता पिता के समान समझकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने वाले कौन? साधु परमिष्टि। साधु परमिष्टि। और इनको देख देख करके अनुकरण कर करके अभ्यास करने वाले कौन? अखाड़े में जाकर जरा प्रयत्न, हम भी जरा पहलवान बने। श्रावक श्राविका। गुरुओं को देख देख करके जीवन में परिवर्तन आता है। श्रावक के जीवन में एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था। महाराज सुनी हुई घटना है, काय को सुना रहे? मैं इसलिए सुना रहा हूं, सुनाए बिना तो ख्याल नहीं आएगा। एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था और एक साधु महाराज के पास उनकी मां ने ले जाकर के महाराज से कहा, महाराज ये लड़का बहुत गुड़ खाता है और पेट में कीड़े हो रहे हैं और फिर भी खाने की इच्छा इसकी मिटती नहीं और इसके लिए गुड़ छुड़ाना है। ये गुड़ छोड़ देगा तो बच जाएगा, सुखी रहेगा, तकलीफ नहीं उठाएगा। महाराज इसका गुड़ छुड़ाओ, आपकी बात ये मानता है, मानेगा। बच्चा भी सुन रहा है, माँ मुझे गुड़ छुड़ाना चाहती और बार बार बोलती है हमसे कि गुड़ छोड़ गुड़ छोड़, पेट में दर्द नहीं होगा, कीड़े नहीं होंगे, गुड़ छोड़। छोड़ो छोड़ो कहने के बाद भी कोई भी मां का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मां तो उपाध्याय परमिष्टि के समान होती है, प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? बच्चे को पता है इसका उत्तर, आपको पता नहीं है। बच्चा जानता है कि मां किस समय क्या क्या करती है। जब मां ने बच्चे को गुड़ छुड़ाने के लिए जब प्रयत्न किया करना शुरू कर दिया, तब से लेकर अब तक माँ बच्चे के सामने गुड़ खाना उसने छोड़ दिया। बच्चा भी समझ रहा है माँ ने गुड़ खाना छोड़ दिया है, मेरे सामने कभी गुड़ नहीं खाती। लेकिन कभी नहीं खाती या सामने नहीं खाती, तो बच्चा जान गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता माँ गुड़ न खाए। जब माँ कुछ एकांत में काम करने लग जाती तब जानबूझकर देखने के लिए वहां जाता था। क्या करती है ये? और धीरे से गुड़ का डब्बा खोलकर जरा खा लेती और चुपचाप बैठ करके रखती थी। बच्चे को पता चल गया, फिर कहने लगी माँ गुड़ मत खा, इससे पेट में कीड़े पड़ते हैं, तुम भी तो खाती हो। ऐसा कहने लगा, अब वो समस्या में आ गई। अब ना भी नहीं कर सकती, हाँ भी नहीं कर सकती, अब महाराज याद आ गए, महाराज ही छुड़ा सकते हैं इसका। किसी को कुछ छुड़ाते समय प्रभाव पड़ता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है? गुड़ हानिकारक है, ये बच्चे को भी ज्ञान है और माँ को भी ज्ञान है, दोनों को ज्ञान है। बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, माँ छुड़ाना चाहती है लेकिन बच्चा नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? माँ के वचनों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वचन के साथ आचरण भी होता है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब वह माँ महाराज के पास उस बच्चे को ले जाती है, महाराज से कहती है कि महाराज छुड़ाओ, आप ही छुड़ा सकते। तो महाराज ने भी कहा अभी हम नहीं छुड़ा सकते, 8 दिन बाद आओ, हम भी नहीं छुड़ा सकते, 8 दिन बाद आओ। तो चुपचाप रहना पड़ा, 8 दिन बाद का आदेश हुआ है तो 8 दिन बाद ही आना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ ये हम क्रॉस नहीं कर सकते कि क्यों किस लिए, नहीं 8 दिन बाद आओ। इतना ही कहा और वह बच्चे को लेकर के चली जाती है, 8 दिन के बाद आती है। 8 दिन में 8 दिन के बाद आने के उपरांत दोनों बैठ गए, महाराज हम आए हैं, बच्चा गुड़ ज्यादा खाता है, अनुकंपा करें, कृपा करें, अपने बच्चे को बचाएं, पेट में दर्द होता है फिर भी गुड़ खाता जा रहा है, इसके प्राण को बचाओ, आपके वचनों का प्रभाव पड़ेगा, इसको कुछ शिक्षा दो, कहो इससे कि छोड़ दे गुड़ को। तो धीरे से महाराज ने कहा बच्चे से तुम गुड़ छोड़ दो। इतना कहते ही महाराज हाँ हाथ जोड़ दिया, आज से गुड़ नहीं खाऊंगा। महाराज का प्रभाव क्यों पड़ा, माँ का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? समझ में आ गया ना? ज्ञान तो होता है हमारे पास, ज्ञान तो होता है, किंतु ज्ञान होने के बाद आचरण क्यों नहीं आता? तो हमारे लिए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी बुरे बुरे कार्य हैं, उनको हम देखते रहते हैं, ज्ञान से जानते रहते हैं कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये बुरा है अच्छा है, पर हमारा ज्ञान हमारा कल्याण करने के लिए कारण क्यों नहीं बन रहा है? हाँ? नहीं, आचरण में लाने के लिए भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? शुद्धता नहीं है, ठीक है, परंतु कोई इस चीज को छोड़ा हुआ व्यक्ति को देख नहीं पा रहा। हाँ, हम बुरे हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो अच्छे व्यक्ति को देखकर अपने आचरण की बुराई को छोड़ने के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कोई बाहरी निमित्त नहीं मिल रहा। यदि निमित्त मिले बिना कोई छोड़ देता है तो वो तो महान है, लेकिन जो नहीं छोड़ पा रहा है, वह छोड़ना चाहता है, तो कब छोड़ना चाहेगा? जब तक कोई नहीं मिलता है तब तक छोड़ने के भाव होते ही नहीं। 10 व्यक्ति शराब पीते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति छोड़ दे तो प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। छोड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है कि शराब बहुत बुरी चीज है, अब नहीं पीना चाहिए, अब तक अज्ञान से पिया है, अब नहीं पीना चाहिए। वो कहना शुरू कर दिया तो उसका प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं? लेकिन 9 में से, शेष 9 में से कोई व्यक्ति उसमें से कहने लग जाए ये शराब बहुत बुरा होता है, इसको नहीं पीना चाहिए, तो शेष 8 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए सर्वप्रथम त्यागना चाहिए। उपाध्याय परमेष्टि इसलिए वो दीक्षा नहीं देते, क्योंकि दीक्षा देने के बाद क्या होता है, क्या करना पड़ता है, कैसे आदेश दिया जाता है, यह अनुभव उपाध्याय परमेष्टि नहीं रखते। इसलिए आचार्य परमेष्टि के पास उन्हें भेज देते हैं और आचार्य परमेष्टि उस शिष्य के लिए माता पिता के समान है। ज्ञान देने वाले मां के समान हैं और आचरण देने वाले पिता के समान है। इसमें सबसे बड़े उपकारी कौन? सबसे बड़े उपकारी कौन? नौ गलत। उपाध्याय परमेष्टि उपकारक। ज्ञान के बिना ही आचार्य परमेष्टि के पास चला जाता वह शिष्य, आचरण को लाने के बाद भी सुखी न होता। प्रथम उपकार ज्ञान का होता है, नंतर का उपकार आचरण का होता है। ज्ञान के बिना यदि आचरण आता है तो केवल जीवन में वह भार बनकर रह जाता है, क्रियाकांड बनकर के रहता है। इसलिए संघ की यह व्यवस्था है, मुनि संघ में आचार्य भी होना चाहिए और उपाध्याय भी होना चाहिए। यदि उपाध्याय नहीं है तो आचार्य स्वयं दोनों कार्य कर सकते, अलग ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। आचार्य परमेष्टि शिक्षा भी दें और दीक्षा भी दें। जो दीक्षा देते हैं वे क्या शिक्षा देने की शक्ति नहीं रखते? रखते। यदि आगम को वो अच्छी तरह से जानते हैं, जान करके तो वो स्वयं दीक्षित हुए हैं। जो आचार्य बनते हैं उनके पास ज्ञान तो होता ही है, आचरण भी होता है, लेकिन व्यवहारज्ञ होते हैं, उनकी एक विशेष बात ये होती है, ज्ञानी भी होते हैं, आचरणवान भी होते हैं, किंतु व्यवहारज्ञ भी रहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि को व्यवहारज्ञ होना कोई आवश्यक नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। मां को क्या मालूम बाजार में किस पदार्थ का क्या भाव है और कैसा बेचा जाता है, कैसा लाया जाता है? मां को तो अपने रसोई घर से मालूम, और पिता को रसोई घर का कुछ भी मालूम नहीं। बनी बनाई रसोई खाते, लेकिन पिता को दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, रसोई बनाने का ज्ञान भी पिता को आवश्यक है, क्योंकि घर में जब वो नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। कुछ अपने हाथ से भी बनाने का ज्ञान होना ही चाहिए। पिता कमाने का काम करता है और माँ कमाए हुए वस्तुओं को किस तरह से खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितने दिन तक खाना चाहिए, आज रोटी बनाकर दो तीन दिन तक खाते रहना चाहिए, बार बार बनाना न पड़े, मानवी में कर्जी का ही बनाते हैं और एक महीने तक खाते ही रहते हैं। अच्छे उपाध्याय परमिष्टि है ये, शिक्षा दे देते, अवश्य खा सकते हैं क्या आप? आप एक जैन हैं, आप किस गुरु के शिष्य माने जाते हैं? आचार्य और उपाध्याय परमिष्टि के शिष्य हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं। आप घर के उपाध्याय परमिष्टि और आचार्य परमिष्टि हैं, संसार के आचार्य कौन हैं? आचार्य परमिष्टि का कोई संदेश आ जाए तो चाहिए ना। उपाध्याय सब यहाँ हैं। बोलो कैसा है ये संसार हमारा? चिंतन तो करना पड़ेगा, अब तो ज्ञान आ गया। कौन सी वस्तु कितने दिन तक खाना चाहिए, एक कैलेंडर बन रहा है। श्रावकों की आहार पदार्थों का शुद्ध काल मर्यादा का एक कैलेंडर बन रहा है, उसमें देख देख करके, उस दर्पण में देख देख करके अपने घर के सारे क्रियाकलापों को चेंज करना चाहिए। धान्य को कैसे रखना चाहिए, कितने दिन तक रखना चाहिए, कितने दिन के भीतर उनको उपयोग में लाना चाहिए, इसका ज्ञान। उसको पीस करके लाते हैं तो कितने दिन तक खाना चाहिए, उसका ज्ञान। पीस करके रखे हुए पदार्थ से कोई हम चीज बनाते हैं तो उसको कब तक खा करके समाप्त करना चाहिए, उसका ज्ञान क्या हमको नहीं होना चाहिए? ये नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है। ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा तो आचरण भी नहीं आएगा। उसी ज्ञान के लिए वह कैलेंडर सबको देने वाले, घर में रखो सभी लोग। कहां पर लटकाना इसको? बाहर नहीं, छत पर नहीं, रसोई घर में। इस कैलेंडर को रसोई घर में लगाना और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आटा की कितनी मर्यादा, कितने दिन तक, ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में कितने दिन तक उसकी मर्यादा होती है, और उसका भी लिखा है उसमें। ध्यान से सुनना, उसका भी उसमें लिखा हुआ है। किसका? जो साल भर खाते हैं आप। क्या? पापड़ और अचार। अचार लोन्स लोन्स। कितने दिन तक खाते हैं आप? साल भर खाते हैं ना? सही बताओ कितने दिन खाते हैं? दो वर्ष तक। और जितना वह जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा लगता है। तीन वर्ष रखेंगे तो और अच्छा लगता, 10 वर्ष रखेंगे तो और भी अच्छा लगे, खा लेना उसको। लोनसक का मर्यादा क्या बताया है? 1 दिन का है। और 1 साल कहां, 1 दिन कहां, कितने दिन खाते हैं आप? अवक्ष खाते हैं। अवक्ष खाना कहीं उपाध्याय परमिष्टि ने शास्त्रों में उपदेश दिया है क्या? उपाध्याय परमिष्टि का क्या शिक्षा है हमारे लिए? उपाध्याय परमिष्टि की शिक्षा क्या है हमारे लिए? कितने दिन का है? 1 दिन खाओ, ये कहा। लोनसक का त्याग मत करो, त्याग के लिए नहीं बता रहे हैं, खाओ, लेकिन कितनी काल मर्यादा के अंदर खाओ? 1 दिन के अंदर उसको खा के समाप्त कर दो, कल तक भी मत रखो उसको, ताजा बनाओ, ताजा खाओ। हाँ, ब्रिज, फ्रिज नहीं, नहीं नहीं नहीं, काल मर्यादा नहीं, ज्यादा नहीं होगा उसका, कब तक रखोगे? और वहां रखोगे तो टेस्ट आने वाला नहीं है, बाहर रखेंगे जब कीड़े पड़ेंगे तब टेस्ट आने वाला है, अंदर रखेंगे तो जैसा का तैसा रहेगा, तो मजा भी नहीं आएगा। मजा आता है इसलिए 1 दिन से अधिक साल भर रखकर, 6 महीने तक रखकर खाते हैं ना, और फ्रिज में रख करके तो मजा नहीं आएगा। कीड़े पड़ते हैं, कौन से कीड़े? वे स्थावर हैं क्या, त्रस हैं? बोलो, त्रस जीव हैं, वो त्रस जीव लट हैं उसमें, अली अली पड़ जाते, बारीक बारीक अली, और जितने अली पड़ जाते हैं उतने रुचकर लगता, जितना वो मांसाहारी होता जाता है पदार्थ उतना ही टेस्ट आता। तो इस जीव के लिए जीना है क्या? रसनेन्द्रीय विषय, रसनेन्द्रीय के लिए हम अवक्ष खाएं क्या? रसना चाहती है तो ताजा खा ले, पर अति रुचकर बनाकर मांसाहारी क्यों बने? ये स्थूल हिंसा है। सम्यक दृष्टि जीव, अविरत सम्यक दृष्टि जीव ताजा ही खाता है। त्रस जीव जिसमें पड़ जाते हैं, जो रुचकर हो जाता है उसका त्याग करता है। ये प्रतिमाओं में आएगा क्या, मूल गुण में आएगा? हाँ, बड़ी हिंसा है ना, ये स्थूल हिंसा है ना। स्थूल हिंसा को मूल गुण में रखा जाता है, मूल गुण में स्थूल हिंसा का त्याग कराया जाता है, और प्रतिमाओं में छोटी छोटी हिंसा को भी कम कराते कराते हिंसा से ही मुक्त कराया जाता है। जब वह श्रावक प्रतिमा पालन करते करते मुनि बन जाता है तो समस्त प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की हिंसा से मुक्त होता। मुनि महाराज किसी को भी नहीं मारते, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, इन सभी जीवों पर दया करना पड़ता है मुनि महाराज को। अपने हाथों से ये मारेंगे नहीं, दया करते। आप दया नहीं कर सकते, अवक्ष खाना छोड़ सकते, त्रस जीवों से बचकर, त्रस हिंसा से बचकर 12 अविरतियों में से 1 अविरति से ही केवल श्रावक बचता है, त्रस हिंसा का त्याग। बाकी वह इंद्रिय विजयी नहीं हो सकता। 5 इंद्रिय और मन इसको तो जीत नहीं सकता, और 5 प्रकार के स्थावर कायिक जीवों की हिंसा से भी बच नहीं सकता। अवक्ष से तो बच सकता है, तो अवक्ष से बचने वाला लोनस खा रहा है, लेकिन लोनस किससे बना, किससे बनता है? आम से बनता है, लींबू से बनता है, आंवला से बनता है, करेला से बनता है, मिर्ची से बनता है, सबसे बनता है। हाँ, अनेक प्रकार आजकल तो लोनचे की क्वालिटी आपको वेराइटी जो है ना बहुत बढ़ गई, पॉकेट रेडीमेड। बहुत मतलब पॉकेट में बंद करके जो लोनचा आ रहा है ना बाजार में, वो तो बिल्कुल ही अभक्ष्य है, उसको खाना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव, आठ मूल गुणों का धारी उस पदार्थ को खा नहीं सकता। और होटल के पदार्थों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी नहीं खाना चाहिए। स्वयं को ही बनाकर स्वयं को ही खाना चाहिए। ये सेल्फ डिपेंड होकर के जीवन जीना, सेल्फ डिपेंड होकर के जीवन जीना, ये अच्छा लगता है कि होटल का रेडीमेड अच्छा लगता है? हमारा जीवन कितना प्रमादी बन गया, अपने पेट भरने के लिए भी हम होटल जाने लगे, भोजन करने के लिए भी होटल जाने लगे। होटल का भोजन हमको लिए रुचकर लगने लगा। होटल जैसा ही भोजन घर में बना लो ना, रुचकर बना लो, ताजा बना लो, अभक्षपने से मुक्त करके बना लो, व्यवस्थित तैयार करो। ये धार्मिक जीवन है हमारा घर का। आजकल महिलाएं बहुत प्रमादी बन गई। महिला अगर आहार बनाना नहीं जानती है तो घर ही बिगड़ जाएगा, पूरा घर मांसाहारी बनेगा, अभक्ष्य खाएगा। अभक्ष्य पदार्थ खाने से दिमाग सम्यक ज्ञान को धारण करने लायक नहीं रहता, ज्ञान नहीं बढ़ता, क्षयोक्षम नहीं बढ़ता, बुद्धि नहीं बढ़ती। यदि बढ़ भी जाए तो पुण्य बंद नहीं करता, पाप का ही बंद करता जाएगा। पाप का बंद करने वाला वह ज्ञान जो थोड़ा बहुत बढ़ गया, क्षोभक्षम दशा को प्राप्त हो गया, वो किस काम का नहीं। आज संकल्प लेना चाहिए कि हम घर में ही भोजन बनाएंगे, घर का ही खाएंगे और घर का ताजा ही बना करके खाएंगे। ये हमारी शिक्षा है। क्या दीक्षा लोगे? दीक्षा लोगे तो घर का बनाओ, घर का खाओ और व्यवस्थित रखो सारे पदार्थों को। प्रमाद क्यों? आटा जितने दिन का चाहिए उतना दिन का ही पीस करके लाओ और घर घर में एक चक्की ले लो। वैज्ञानिक युग आ गया, सस्ते में चक्की मिल रहे हैं। 5,000-6,000 खर्च करेंगे तो एक चक्की मिलती है। धान को ताजा पीसकर, शोध कर, धोकर, शोध कर, ताजा पीसकर, पहले सुखाकर, धोकर, सुखाकर, पीसकर शुद्ध आटा निकालो। बुद्धि क्षयोक्षम बढ़ेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा। आप होटल में जा रहे हैं तो बच्चों को भी होटल में ले जाते होंगे। घर में खाना नहीं बन रहा है तो होटल में ही जाएंगे ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। मान के चलो सुबह का सुबह खाते हैं और बचता है तो शाम को खाते हैं, तो इतना तो माफ है।
शाम को बना हुआ शाम को ही खाना चाहिए।
हाँ,
और शाम को बना हुआ दूसरे दिन सुबह नहीं खाना चाहिए।
हाँ, वो बासी बन जाता है, बासी।
ये तो सही बात है,
सही बात है।
मजबूर के टाइम पर क्या करना?
और ये मजबूरी रोज रोज हो तो क्या बताऊं? ये मजबूरी रोज रोज है तो मैं कैसे बताऊं। इन मजबूरियों को कम तो करो, हम मजबूरी से कहीं खाना न पड़े इस प्रकार उसको कम करना चाहिए। कल खाना न पड़े आज सावधान हो जाओ, या तो बांध करके ले जाओ, जहां खाना है उसको बांध करके ले जाओ। सुबह बनता है, सुबह का ताजा बना हुआ बांध करके लेंगे तो शाम को खा सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आज बना हुआ कल भी खा सकते हैं। कोई कोई पदार्थ का 7-7 दिन की मर्यादा है, तो एक हफ्ते तक खा सकते हैं आप। ऐसे कौन कौन से? नहीं, हमको सुनाई नहीं दिया। फ्रूट बिना पानी वाले, हाँ ये फ्रूट बिना पानी वाले जो चीजें बनाते हैं वो सभी, लड्डू, देखो मानव में आता है कर्जी काई बनाते हैं। कर्जी काई क्या बोलते हैं मराठी में? कर्जी काई करंजा, करंजा बोलते हैं। करंजा कितने दिन खाते हो आप लोग? महीनों तक खाते। महीनों तक मर्यादा है क्या उसकी? उसकी मर्यादा क्या है? जिसमें पानी मिला रहता है उसकी मर्यादा एक ही दिन की है। दूध में बना हो तो 24 घंटे की है। नहीं, वो कैलेंडर देंगे आप लोगों को, वो कैलेंडर रसोई घर में लटका के रखना है और उसके अनुसार बनाना है। लेकिन ये प्रमाद के कारण से ऐसा होता है, रोज रोज कौन बनाए ऐसा? ताजा बनाकर ताजा खाने में बहुत टेस्ट भी रहता है, सात्विक भी रहता है, पाप भी नहीं लगता। अभक्ष्य खाने से हम बच जाते हैं, हमारी धर्म की रक्षा हो जाती है। धर्म की रक्षा करना हो तो ताजा खाना, सम्यक दर्शन धर्म की रक्षा करना हो तो ताजा खाना, अवक्ष नहीं खाना। जिसमें त्रस जीव पड़ जाते हैं उस पदार्थ को तो खाने के लिए मना ही है, 8 मूल गुण में उसको नहीं खाना चाहिए। ये शिक्षा है। दीक्षा कौन देंगे? तो ये तो छोटी छोटी दीक्षाएं हैं, अपन भी दे सकते हैं। पिंची कमंडल लेना हो तो आचार्य श्री के पास जाओ। घर में कैसे चलना चाहिए ये नियम लेकर के चलना नहीं पड़ता, ये कोई दीक्षा नहीं कहलाती। मैं लोनचा एक दिन ही खाऊंगा, इसको नियम लेना पड़ेगा? नहीं, ये मानवीय धर्म है। मानवीय धर्म को तो विवेक से निभाया जाता है, इसको व्रत के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। सम्यक दर्शन कोई व्रत नहीं होता, और सम्यक दर्शन के रक्षा के लिए जो 8 मूल गुण हैं वे भी कोई व्रत नहीं कहलाते, वे मानवीयता के आचार विचार कहलाते हैं। मानवीयता, एक मानव जन्म ले चुका है तो वो कैसे रहे, ये सभ्यता सिखाते हैं। 8 मूल गुण महाराज, मिथ्या तो त्याग का व्रत दे दो, व्रत लेने की क्या जरूरत है? धार्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी व्रत से नहीं होता। हाँ, स्वाभाविक आचरण, कुल परंपरा का आचरण माना जाता है ये 8 मूल गुण और सम्यक दर्शन। जैन कुल की परंपरा है ये, हमको जन्म से आना चाहिए ये 8 मूल गुण और सम्यक दर्शन, जन्म के साथ ही आना चाहिए। इसलिए इनको कुलाचार भी कहा है। कुलाचार यानी 8 मूल गुण, मद्य नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मधु नहीं। ये हमारे वंश परंपरा की संस्कृति है, सभ्यता है। इससे च्युत होना जैन कुलाचार की च्युति है, कुलभ्रष्ट माना जाता है। कुलभ्रष्ट मांसाहारी है तो कुलभ्रष्ट, शराब पीता है तो कुलभ्रष्ट, मद खाता है तो कुलभ्रष्ट, और मर्यादा से बाहर का खा रहा है छह छह महीने का तो कुलभ्रष्ट। किस किस से हम कुलभ्रष्ट होते हैं? जिसमें त्रस जीव पड़ जाते हैं ऐसे वस्तुओं को हम खा रहे हैं तो कुलभ्रष्ट कहलाएंगे। हमारे कुल का आराध्य देवता एक ही है, जिनेंद्र भगवान, और हमारी कुल परंपरा का शास्त्र एक ही है, सर्वज्ञ वाणी, और हमारे कुल परंपरा का गुरु एक ही है, दिगंबर वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, मायाभ्यंतर परिग्रह से रहित गुरु ही धार्मिक क्षेत्र का गुरु है। और संसार में बच्चे को माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन धार्मिक गुरु नहीं, सांसारिक गुरु। गुरु दो प्रकार के, लौकिक गुरु और धार्मिक गुरु। जो स्कूल कॉलेजों में हमें पढ़ाते हैं वे भी गुरु। कैसे गुरु? धार्मिक गुरु नहीं, लौकिक गुरु। वो लौकिक शिक्षा देते, धर्म गुरु धार्मिक शिक्षा देते। ये दोनों गुरु जीवन में आवश्यक हैं कि एक ही पर्याप्त है? दोनों आवश्यक है। धार्मिक गुरु सबसे बड़ा उपकारी, क्योंकि वो लौकिक क्षेत्र में भी आने वाली विकृतियों का उपदेश देते हैं, और धार्मिक क्षेत्र में भी जो शीतलाचार आता है उसको भी दूर करने के लिए उपदेश देते हैं। दिगंबर गुरु सबसे बड़े उपकारी हमारी जिंदगी में, उनके जैसे उपकारी कोई नहीं, क्योंकि पाप से उन्होंने बचा लिया, उन्होंने पाप कार्यों से बचाया, तो इससे कितना बड़ा लाभ हो गया। हमारा हार्ट अटैक होकर मरण होने वाला था उससे बचाया, अवक्ष खाने से बचाया, रात्रि भोजन करने से बचाया, और कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सब कुछ शिक्षा दी। वह शिक्षा हमारे जीवन में आ गई, हमने ग्रहण किया उस शिक्षा को और आचरण में लाया, तो व्रत लेकर के आचरण में नहीं लाने की जरूरत नहीं, ये तो स्वाभाविक ही वो आचरण में आना चाहिए, ये स्वाभाविक क्रिया होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। कौन से? आठ मूल गुणों के और सम्यक दर्शन के संस्कार। हम सम्यक्त्व के कारण से जैन हैं या मिथ्यात्व के कारण से? सम्यक दर्शन के कारण से अपन जैन माने जाते हैं, और हमारी वंश परंपरा में सम्यक्त्व नहीं चल रहा है तो हम जैन कहलाने का अधिकारी कहां है? कुलभ्रष्ट है, कुलभ्रष्ट। और कुलभ्रष्ट को पुनः प्रायश्चित लेकर, क्या प्रायश्चित? यही प्रायश्चित, हे भगवान, कुल आचरण का ज्ञान ही नहीं था, आचरण भ्रष्ट हो गया था, अब मैं मिथ्या तो नहीं करूंगा, सम्यक तो धारण करके आत्म कल्याण का रास्ता अपना लूंगा, ये संकल्प लेकर के स्वयं ही कुलाचार का आचरण करने लगता है तो लग जाता है मार्ग पर। भूल हो गई है तो उस पर पुनः चलना ही प्रायश्चित है। हमने बहुत मिथ्यात्व किया, उसका क्या प्रायश्चित महाराज? कोई प्रायश्चित नहीं। अभी वर्तमान में आप ठीक हैं तो भूतकाल में किया हुआ वह पाप सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद वो निर्जरा को प्राप्त होता है, होता ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के उपरांत उसके 41 कर्मों का बंध नहीं होता। तो मिथ्यात्व को दबा दिया, उदय में नहीं आया, तो उदय में नहीं है तो बंद भी नहीं है, और उपशमन है तो जिनका उपशमन है उनकी निर्जरा भी अवश्य होगी, होती ही रहती है। तो निर्जरा होने लगी, मिथ्यात्व कर्म जो पहला बंधा था उसकी हम निर्जरा करने लगे। किस कारण से करने लगे हम? सम्यक तो परिणामों के कारण से निर्जरा होने लगी, ऑटोमेटिक होने लगी। इसको क्या देवशास्त्र गुरु के सामने जाकर के नियम लेना पड़ा? इसको क्या दीक्षा मानी जाएगी? सम्यक तो दीक्षा के माध्यम से नहीं आता, कुलाचार से ही आता है, कुल परंपरा से आता है। हमारे माँ बाप सम्यक दृष्टि थे, हमारे अजोबा सम्यक दृष्टि थे, अजोबा के पिताजी भी सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि थे। इस तरह से कुल परंपरा से ये धार्मिक संस्कार आना चाहिए। इसको कहते हैं कुल, जैन कुल, जैन कुलाचार। और इस जैन कुलाचार को केवल जैनों के लिए कहा, ऐसा नहीं, ये मानव कुलाचार है। जैन कुलाचार का दूसरा अर्थ है मानव कुलाचार। जैन कुलाचार कहना नहीं चाहते तो मत कहो, कोई दिक्कत नहीं, पर मानव कुलाचार तो कहो। मानव को मोक्ष की सिद्धि सम्यक दर्शन से है क्या? नहीं है। यही एक ही मार्ग है क्या? अन्यत्र और भी मार्ग है। तो सभी मानव मात्र को जब भी वो आत्म कल्याण करना चाहेगा, मोक्ष जाना चाहेगा, इसी आचरण को, सम्यत्व के आचरण को, आठ मूल गुणों के आचरण को ही अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए इस कुलाचार का नाम मानव कुलाचार। समझ में आ रहा? ये मानव कुलाचार है। ये जैन का मतलब अपन जैन है और वो सब, ये ऐसा विचार नहीं करने का, ये सबका है, मानव कुलाचार। ये मानव कुलाचार मानवीयता सिखाता है। आप मानवीय आचार विचारों को धारण करोगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना तो आता नहीं। सम्यक दर्शन भले ही ना आए लेकिन कम से कम आठ मूल गुणों का आचरण तो आना ही चाहिए। अवक्ष नहीं खाना, मांसाहारी नहीं बनना, शराब नहीं पीना, और ताजा खाना, ताजा रहना, बासी खाने वाले बासी बन जाते, ताजा खाने वाले ताजा रहते। आजकल पहले जैसे लोग थे, बहुत सुंदर सुंदर थे, उनके चेहरे को देखते ही और एक बार देखूं ऐसा लगता, ये इतना इतना सुंदर कैसे ही क्यों है। पहले के लोग सुंदर होते थे, आज रूखे सूखे मुख वाले क्यों होते हैं? ये अवक्ष खाते हैं, अवक्ष है? अवक्ष पदार्थ बहुत समय तक रखा हुआ पदार्थ ताजापन को खो देता है, तो मुख पर ताजा कैसा आएगा? ताजा खाएंगे तो मुख भी ताजा रहेगा। और यहाँ आकर भगवान से अर्घ्य चढ़ा करके, हे भगवान ताजा मुख प्राप्त है, सुंदर रूप प्राप्त है, अर्घ्यम निरूपामिति स्वा, अवक्ष खा रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं कि ताजा बनना चाहते हैं, हमारी शरीर की सुंदरता होनी चाहिए, रहनी चाहिए। नहीं, आचरण भी चाहिए। आप स्वयं सुंदर बनना चाहते हैं तो आचरण को भी सुंदर रखो, और वह आचरण आठ मूल गुण के बिना नहीं आ सकता। होटल में खाना नहीं, घर में ताजा बनाना, सबको ताजा ही खिलाना, आप भी सुधर जाओगे और घर के सारे परिवार को ताजा रखोगे, वो भी सुंदर बनेंगे, आप भी सुंदर बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमको ये ज्ञान नहीं था। कोल्हापुर में रहते रहते 50 साल हमारी उम्र हो गई, लेकिन ये ऐसा कहने वाले, मार्ग पर रहने वाले कोई आए नहीं, और हमारा जीवन यूं ही 50 साल चला गया। अब तो करोगे क्या? नहीं, अब तो कुछ करोगे क्या? नहीं, जीवन के लिए परिवार का हित करो, स्वयं का हित करो, इसी में सुख है, इसी में शांति है, ताजा खाने वाले घर के अंदर कभी भी झगड़े झंझट नहीं रहते, शांति रहती है। पति मानता नहीं, घर में बैठा रहता है। पत्नी यहां आती है, धार्मिक प्रवचन सुनती है, ये प्याज छोड़ देती है और वो प्याज चाहता है। हा? उसको एक दिन उठा के ले आओ। कुछ भी खाता रहता। हम ताजा खाना चाहते हैं, ताजा खिलाना चाहते हैं, पसंद नहीं करते, परेशान हैं। इसी का नाम तो अशांति है। पति के विचार अलग और पत्नी के विचार अलग, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शादी के समय में धार्मिक परिवार आपने नहीं ढूंढा। पहला क्या देखा? पैसा देखा, कितने कार गाड़ी हैं, कितने बिल्डिंग हैं, कितना इनकम है, कौन सा सर्विस है, फॉरेन रिटर्न रहा है क्या नहीं, ये देखा। ये नहीं देखा कि आलू प्याज खाते हैं क्या, अवक्ष खाते हैं क्या, मांस खाते हैं क्या, मिथ्या तो करते हैं क्या। ये बातें शादी के टाइम में पहले करनी चाहिए। हाँ, और व्यर्थ कुंडली देखने जाते हैं कि पति ठीक है क्या नहीं, योग जमेगा क्या नहीं। अरे पति मांसाहारी है, शराबी है, तुम कुंडली देख करके भी शादी कर लोगे तो क्या होगा? हाँ? और वो भी कुंडली देख करके ही। ये क्रियाकांड ठीक नहीं है, केवल कुंडली देखो, वो देखो, ये देखो। अरे धार्मिकता देखो, धार्मिकता सबसे बड़ी कुंडली है। लड़के के स्वभाव देखो, लड़की का स्वभाव देखो, धार्मिकता को देखो और फिर शादी ठहराव करो। और कुछ भी ठहराव नहीं करना है तो हम ठहराव करते हैं आपका क्या करना है। मुमताज नहीं मिलती, ताजा ताजा खाए नहीं तो मुमताज कैसे मिलेगी? हमारा आचरण पहले ताजमहल बने, ताजा महल बन जाए तो ताजमहल बन जाए। ताजमहल का दूसरा नाम ताजा महल, क्योंकि जब भी देखो नया ही दिखता है, इसलिए ताजा महल। हाँ, वधू और सम्मेलन शुरू होता। हाँ, हाँ नहीं, आजकल ठहराव तो मोबाइल पर ही ठहराव हो जाता है। हाँ, नेट पर। हाँ, नेट के गेट पर ही ठहराव। कैसा चलेगा? ये ठीक नहीं है। दोनों को परस्पर मिलना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का पता लगाना चाहिए घर से, क्या करता है क्या नहीं करता। हमारी लड़की सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी, एक ही मत देखो। हमारा लड़का सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा, एक ही मत देखो। देखना किस बात को? कि इनका स्वभाव कैसे है, ये क्या करते हैं, किस प्रकृति के प्रकार की प्रवृत्ति वाला है, ये देखना बहुत आवश्यक है। प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो कभी जमेगा नहीं। चाहे कैसा भी किसी भी कैलेंडर से आप कुंडली निकालो, कुंडली देखो ही मत, देखने की जरूरत भी नहीं, व्यर्थ है वो। सिर्फ जा करके देखो, परीक्षण करो, निरीक्षण करो, बार बार करो, एक बार नहीं 10 बार करो। इसके बाद आजकल तो स्कूल कॉलेज में ही ठहराव हो जाता है दोनों का। वो भी ठीक है, लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। माँ बाप को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। माँ बाप के लिए भी ये शिक्षा है कि वो भी विचारक बने, विवेकी बने, धर्म की दृष्टिकोण से देखे। धर्म प्रमुख है, दोनों के जुड़ने के बाद धर्म भ्रष्ट हो जाए तो, कुल भ्रष्ट हो जाए तो क्या फायदा आपका जीवन? त्रिरंच का जीवन और आपका जीवन एक ही बनेगा फिर, त्रिरंचों में कोई धर्म नहीं हो पाता। हाँ, उन्होंने शादी, हाँ, कुंडली देख करके किसी ने शादी नहीं की, और कुंडली देख करके किसी महापुरुषों ने दीक्षा भी नहीं ली। जब वैराग्य हुआ, जिस दिन हुआ, जिस मुहूर्त पर हुआ, वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त, और उसी मुहूर्त में दीक्षा ले ली। मुहूर्त निकाला नहीं गया। क्यों नहीं निकाला? मुहूर्त निकालते निकालते वैराग्य की विशुद्धि कम हो जाए तो फिर दीक्षा लेने की क्या मतलब रहा? दीक्षा लेते समय तो परम विशुद्धि होना चाहिए, वो निकल गया समय तो मुहूर्त पर करने से क्या फायदा हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना। मुहूर्त पर केवल ज्ञान नहीं होता, मुहूर्त पर दीक्षा नहीं होती, मुहूर्त पर सम्यक दर्शन भी नहीं होता, मुहूर्त पर मोक्ष भी नहीं होता विदाउट मुहूर्त की। और फिर शादी के लिए मुहूर्त क्यों? जब धार्मिक कार्य, श्रेष्ठ कार्य मुहूर्त से नहीं होते तो शादी मुहूर्त पर क्यों? मुहूर्त देखने की अपेक्षा से योग देखो निकट जाकर, कि ये ठीक है क्या नहीं, कुलाचार वाले हैं क्या नहीं, सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, धार्मिक है क्या नहीं, भक्षा भक्ष खाते हैं क्या नहीं, ये देखो। और नहीं मिलते हैं, नहीं सही, कैंसल। ऐसा जहां मिलेगा वही देखना, भले ही धन संपत्ति की अपेक्षा से गरीब हो। वो कभी भी ऐसे जोड़ी कभी भी गरीब नहीं रह सकते, ध्यान रखना। दोनों अगर धार्मिक हैं पति पत्नी तो खूब कमा करके करोड़पति बनेंगे ही निश्चित रूप से। धर्मो रक्षति रक्षितः। भौतिक जीवन की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, धार्मिक जीवन की चिंता करनी चाहिए। धार्मिक जीवन अंतिम समय तक जुड़ा रहेगा दोनों का। हाँ, वो तो है ही आजकल के। हाँ, यही चल रहा है ना, धर्म कुलाचार को भूलने के कारण से ये सब हो रहा है। कुलाचार को भूल गए लोग, 8 मूल गुण भूल गए और सम्यक दर्शन भूल गए, ये मानवीयता को भूल गए। कुलाचार भूल गए तो मानवीयता है ही नहीं। हम मानव नहीं कहला सकते, हम दानव जीवन जिस किसी प्रकार से जीवन जीना है इसलिए जी रहे हैं, निकाल रहे हैं टाइम। और ऐसी गलती से शादी माँ बाप करते हैं तो कितना भोगना पड़ता है बाद में। टाइम हो गया जिनवाने आर की चलना। हाँ
त्याग दिया संसार को, हे गुरु आप महान। सब कान में प्रभु बने पाए पद निर्वाण।